बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है लीबिया में बदमनी और खाना जंगी का ख़तरा। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के अतराफ में मुसल्ला ग्रोहों के दरमियान लड़ाई का सिलसिला जारी है, जबकि दारुल हुकूमत में हंगामी हालत के नफाज का ऐलान कर दिया गया है। रिपोर्टों में बताया गया है कि तराबलस के अतराफ की सड़कें, खासतौर पर ताजुरा और तराबलस के दरमियान साहिली रोड झड़पों की वजह से बंद कर दिया गया है और सड़कों पर भारी फौजी गाड़ियाँ और एंटी एयरक्राफ्ट तोपें नस्ब हैं। लीबिया के वज़ीर आज़म अली ज़ैदान और दीगर हुकाम ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार मुसल्ला ग्रोहों को बताया है। उन्होंने कहा है कि जुमे को आवाम के मुजाहरे मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे और उन पर फायरिंग का कोई जवाज़ नहीं था। उन्होंने कहा है कि 2013 में जनरल नेशनल कांग्रेस में पास होने वाले कानून के मुताबिक दारुल हुकूमत तराबलस में मुसल्ला ग्रोहों की मौजूदगी गैर कानूनी है और उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लीबिया में तशद्दुद की ताज़ा लहर उस वक्त शुरू हुई जब जुमे को दारुल हुकूमत तराबलुस में अवाम ने तशद्दुद और बदमनी के खिलाफ वसी मुजाहरे के दौरान मुसल्ला ग्रोहों से शहर से निकल जाने का मुतालबा किया। मुजाहरीन पर मुसल्ला ग्रोहों की फायरिंग और इसके बाद शुरू होने वाली झड़पों में 72 से ज़ायद अफराद हलाक और 550 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लीबिया के हालात पर नज़र रखने वाले अक्सर तजिया निगारों का इस बात पर इत्तेफाक है कि लीबिया में फौजी ऑपरेशन के ज़रिए इनकलाब को हाईजेक करने वाली आलमी ताकतों, खासतौर पर नेटो ने अपने मखसूस अहदाफ के तहत इस मुल्क में मुसल्ला ग्रोहों की हौसला अफजाई की है, हत्ता उन्हें असलहे भी सप्लाई किए हैं ताकि इस मुल्क में अफरात तफरी की सूरत हाल बरकरार रहे, दुनिया उनकी लूट मार और साम्राज्य इकदाम की तरफ से गाफिल रहे और वो काम मुसल्ला ग्रोहों से जब चाहें काम ले के खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करके लीबिया की हुकूमत को ब्लैकमेल करें। आज के प्रोग्राम में हम लीबिया में मौजूदा खुरेजी के अलल व असबाब के जायजे के साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल का असल जिम्मेदार कौन है। क्या लीबिया किसी हमागीर खाना जंगी शुरू होने के खतरे से दोचार है? और इसी के साथ हम लीबिया में नेटो और इनकलाब को हाईजेक करने वाली आलमी ताकतों के अहदाफ का भी जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम में लंदन स्टूडियो से हिस्सा लेंगे बर्रे सगीर के मुमताज़ दानश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर अली जाफर जैदी। दिल्ली स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे हिंदुस्तान के मारूफ तजिया निगार डॉक्टर वैद प्रताप वैदक और टेलीफोन लाइन के ज़रिए आज की बहस में शामिल किया जाएगा हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कालम नवीस हसन कमाल को। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
लीबिया में हालात इंतहाई बोहरानी हैं और अस्करियत पसंदों और आवाम के दरमियान झड़पों के नतीजे में तराबलस में दसियों लोग हलाक हो गए हैं। लीबिया में इस झड़प के बाद 3 दिनों के कौमी शोक का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अस्करियत पसंदों ने पुरअमन तौर पर मुजाहरा करने वालों पर फायरिंग की है जो हुकूमत की इजाज़त के साथ मुजाहरा कर रहे थे। ज़राए ब्लाग में नशर होने वाली एक वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि एक गाड़ी से मुजाहरीन को बराह रास्त निशाना बनाया गया। हालांकि फौज ने झड़प रोकने के लिए मिग जंगी तैयारों से इंतहाई नीची परवाजें की। झड़पों के बाद लीबिया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुसल्ला ग्रोहों को हर हाल में तराबलस से निकलना होगा। जुमे से शुरू होने वाली झड़पों में 72 से ज्यादा अफराद हलाक और तकरीबन 600 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। तराबलस में झड़पों में हल्के और भारी असलहे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लीबिया में झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब लीबिया के मुसल्ला ग्रोहों ने जुमे को उन सैकड़ों मुजाहरीन पर जो मुसल्ला ग्रोहों को दारुल हुकूमत से बाहर निकालने के हक में मुजाहरे कर रहे थे फायरिंग कर दी। लीबिया में मुसल्ला ग्रोहों के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी मुजाहरा नहीं हुआ था। तराबलस शहर के बाशिंदे अपने मुजाहरों के दौरान इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि मुसल्ला ग्रोहों को शहर से बाहर निकाला जाए। मुजाहरीन के इस मुतालबे से बरहम होकर मुसल्ला ग्रोहों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद शहर मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। लीबिया की अबूरी हुकूमत ने एक बयान जारी करके जोर दिया है कि आए दिन होने वाले ये वाकयात असलाह रखने की ज़ाती ख्वाहिशात का नतीजा है और हुकूमत ने बारहा खबरदार किया है कि सिक्योरिटी अहलकारों के अलावा दूसरे लोगों के पास असलहे की मौजूदगी के इंतहाई खतरनाक नतायज बरामद हो सकते हैं। इस्लामी जमहूरी ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान मर्जिया अफगम ने लीबिया के हालिया वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में इन हलाकतों पर ईरान की हुकूमत और कौम की जानिब से ताज़ियत पेश करते हुए लीबिया में अस्करियत पसंदों को गैर मुसल्लह किए जाने और इस मुल्क में कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। लीबिया में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल अस्करियत पसंदों में इख्तदार की तलब का नतीजा भी है जो मुल्क के नापायदार हालात का फायदा उठाकर अपने मुतालबात तस्लीम कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो हुकूमत में अपने हिस्से के खाहां हैं और चूंकि लीबिया में कानून और नज्म व नसब का कभी वजूद नहीं था इसलिए इस मुल्क में असलहे के जोर पर मुतालबात मनवाने की कोशिश का रिवाज है और जमहूरियत और अच्छे हालात के वादे के साथ लीबिया पर हमला करने वाले नेटो और आलमी फरीक इन हालात में खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। यही नहीं बल्कि कुछ आलमी फरीक मौजूदा हालात से फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लीबिया इस वक्त मैदान जंग बन चुका है और फिलहाल असलहे की स्मगलिंग जोरों पर है जिसकी वजह से भी बहुत से यूरोपीय मुल्कों के साथ साथ असलहा बनाने वाली कंपनियां भी लीबिया के मौजूदा हालात में इंतहाई दिलचस्पी ले रही हैं और अपने मफादात की तकमील की कोशिश कर रही हैं। और ये वही मुल्क और हुकूमतें हैं जिन्होंने कज़ाफी के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था और अब वो कज़ाफी के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अस्करियत पसंदों की ही तरह अपना हिस्सा चाहती हैं। वैसे लीबिया के हालात दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों को इस्तेमाल करके अपने मकासद की तकमील की कोशिश करने वाली सभी हुकूमतों और सभी फरीकों के लिए दर्स इबरत हैं।
जी नाज़रीन, लीबिया में हालात इंतहाई बुहरानी हैं और बाज तजिया निगारों का ख्याल है कि बहुत तेज़ी के साथ इस मुल्क के हालात एक हमागीर खाना जंगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर अली जाफर जैदी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जी जैदी साहब, लीबिया में शुरू होने वाली ताज़ा झड़पों के बारे में आपका तजिया क्या है?
जी ये ताज़ा झड़पें माजी की झड़पों से ही मुंसलिक हैं और पूरा मुल्क एक अफरा तफरी का शिकार हुआ जो कि नेटो की जो फोर्सेस थीं और उन्होंने जो वहाँ पर शहरी यानी सिविलियंस को बचाने के नाम पर वहाँ गए और बमबारी करके हज़ारों शहरियों को उन्होंने मारा और ये उन्होंने किया सिक्योरिटी काउंसिल के 1973 रेजोल्यूशन के बाद और उन्होंने जो रेजोल्यूशन था वो वहाँ सिविलियंस को बचाने के लिए था लेकिन उस रेजोल्यूशन की रोशनी में उन्होंने लीबिया में ये ऊपर से गोलियां बरसाईं, लोगों को मारा और नीचे उन्होंने रेबल क्रिएट किए जिनको असलाह भी दिया और उनकी पूरी हिमायत की, पूरी सपोर्ट की और इस तरह से उन्होंने कज़ाफ़ी की हुकूमत का तख्ता उल्टा। हुकूमत चेंज होने के बाद अब ये जो मलेशिया है या ये जो ग्रोह हैं ये बाहर से गए हुए हैं, इनको फाइनेंस किया था, इनकी ट्रेनिंग की गई थी और इसमें कतर, सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका और यूरोप के ममालिक बरतानिया समेत शामिल थे और इनकी शमूलियत का हदफ था वहाँ हुकूमत चेंज करने के बाद वहाँ के वसाइल जो के तेल बुनियादी उनका जो कुदरती वसाइल में तेल और गैस हैं उस पर कब्ज़ा हुआ। यह है कि ये जो मलेशिया है ये जो गार्ड्स हैं इन्होंने वहाँ ये वार लॉर्ड्स बन गए हैं, इन्होंने छोटे छोटे और बड़े बड़े शहर इनके कब्ज़े में हैं, मरकज़ी हुकूमत की रिट नहीं है किसी भी इलाके पर। हत्ता के पिछले महीने जो जैदान थे हैं इनको भी उन्होंने अगवा कर लिया और 6 घंटे तक इनको अपने कब्ज़े में रखा। तो मरकज़ी हुकूमत का कंट्रोल किस हद तक है इसका अंदाज़ा इस वाक़े से हो सकता है। इलाके हैं जहाँ पर जगह जगह कबायली, जो कबायली इलाका है अभी भी वहाँ ट्राइब्स हैं, और मुख्तलिफ ट्राइब्स जो हैं उनके साथ मिलकर वार लॉर्ड्स ने अपनी अपनी पॉकेट्स बनाई हुई हैं। और ये जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ है, इसमें जो अवाम का मुतालबा है, जो कई यानी पिछले साल भर से ये मुतालबा चला आ रहा है कि ये लोग कौन हैं, ये जो मलेशिया गार्ड्स अपने आप को कहते हैं, इनका ताल्लुक लीबिया से नहीं है, इनको वापस जाना चाहिए। मगर इनका अपना इंटरेस्ट वहाँ के जो लोग जिन्होंने कजाफी के खिलाफ इंट्रीग की थी और उनके
जी
खिलाफ रेबल कहलाए थे, ये और वो इनके मफादात मिले हुए हैं। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा, जो कि एक एयर कमांडर थे, एयर फोर्स के कमांडर
जी
अब्दुल रब बरासी, उन्होंने जब ये एजिटेशन शुरू हुआ कजाफी के ख़िलाफ़, तो वो रेबल के साथ शामिल हुए, और अब उन्होंने अपनी एक ऑयल कंपनी बना ली है,
जी
और वो ये कहते हैं कि जो नेशनल ऑयल कंपनी है उसके मुकाबले में इनकी रीजनल जो कंपनी है इसका
जी
कंट्रोल तेल पर होगा, यही तेल बेचेंगे। उन्होंने अपना एक बैंक भी कायम कर लिया है।
जी जी
तो अब रेबल और उनके इस तरह के जो इंचार्ज हैं, वो एक अनार्की मुल्क में उन्होंने क्रिएट कर दी है, मरकजी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है,
जी
और तेल जो है वो ये जो मलेशिया गार्ड्स हैं ये अपने तौर पर बेचने के मामले में हैं, बेच
जी
रहे हैं, और ये जो ये कमांडर साहब थे, इस तरह
जी
के कई लोग हैं जो तेल के ज़खायर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, उनको ज़ाती हवाले से बेचना चाहते हैं।
जी
और चूंकि मुल्क की तमाम मईशत, तकरीबन 90% मईशत का दारोमदार तेल पर है, चुनाचे ये ग्रोह
जी
अब तेल पर कब्ज़ा कर रहे हैं, गैस पर कब्ज़ा कर रहे हैं, बल्कि
जी
बर्बर कबीला जो साउथ में है
जी जी
उसने भी पिछले मंडे को जो गैस की पाइपलाइन की सप्लाई थी उस पर कंट्रोल करके मुतालबा ये कर दिया कि ये इस पर हमारा हक है और हमें इसका जो मेजर शेयर है वो मिलना चाहिए। तो सूरत यह है कि मुल्क में जो माशी सूरत हाल है उसमें तमाम ग्रोह अपना अपना लूट मार लेना करना
जी जी
चाहते हैं, अवाम इन मलेशिया गार्ड से तंग आए हुए हैं, हर घर में असला है, हर शख्स के पास कलाशनकोफ भी है, रॉकेट भी
जी
है,
जी
हत्ता के एक साहब आए हुए थे, उन्होंने बताया कि हर घरों के
जी
सामने टैंक भी खड़े हुए हैं,
जी
तो टैंक जो उन्होंने उस दौरान कब्ज़ा किए थे, तो असला लोगों के पास है, मलेशिया
जी
अपने तौर पे बाहर से जाकर इन पर मुसल्लत हैं। तो एक अजीब अनारकी की सूरत है, और ये वाकई ये ख़दशा है जो आपने जिसकी तरफ निशानदेही
जी
की कि सिविल वॉर की शक्ल इख्तियार कर सकती है सूरत हाल।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार डॉक्टर वैद प्रताप वैदक साहब मौजूद हैं। वैदक साहब आधा अर्ज है। वैदक साहब, लीबिया के हालात आपके पेश नज़र हैं। जुमे से
आदाब
दारुल हुकूमत
आदाब
तराबलस और उसके अतराफ के इलाके में
जी
झड़पें शुरू हुई हैं, जिनमें अब तक की इत्तला के मुताबिक 80 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, 600 650 के करीब उसमें ज़ख्मी हुए हैं। दारुल हुकूमत तराबलस में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये मजमूई सूरत हाल जो लीबिया की सामने आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं?
मुझे लगता है ये है कि ये जो लीबिया में शुरुआत हुई है
जी
ये शुरुआत ही बड़ी इमोरल थी,
जी
गैरकानूनी थी। यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास
जी
किया, उसका बेजा इस्तेमाल कुछ मुल्कों ने जिनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है किया,
जी
और उसी के नताइज हैं कि अब वहाँ कोई चैन व अमन नहीं है, पूरा लीबिया खतबदा रहा है, जिसको जो मौका मिल रहा है वो हाथ साफ कर रहा है, कहीं मिलिशिया काबिज है, कहीं कोई ट्राइब काबिज है, कहीं कुछ मोहल्ले का गिरोह काबिज है,
اور جس کو جو ہاتھ لگتا ہے وہ لے اڑتا ہے. ایسی حالت میں جو لیبیا کے عوام ہیں وہ بے حد ناخوش ہیں، بے حد پریشان ہیں، اور وہ نجات چاہتے ہیں اس سارے ماحول سے، لیکن کیا کریں. ابھی لیبیا کو کچھ باہری ملکوں نے، جن کے نام آپ نے بھی لیے
جی،
ان کا نام لیتے مجھے شرم آتی ہے، وہ اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں، لیکن لیبیا کی جنتا کون ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں، لیبیا کے عوام کون ہیں؟ وہاں سب عیسائی رہتے ہیں کیا؟ سب یہودی رہتے ہیں کیا؟ سب ہندو رہتے ہیں کیا؟ وہ سب بھی مسلمان ہیں. ان بیچاروں کو اس قدر پریشانی میں ڈالنا، ان کو ایک گرہ یدھ میں، ایک طرح کے آپسی جھگڑوں میں پھنسانا، یہ کام کچھ ملکوں نے کیا ہے ان کے دلال بن کر، جو بڑے پاور ہیں
جی،
امریکہ، برٹن، فرانس، جرمنی، جن کو نیٹو دیش کہتے ہیں. یہ نیٹو ملک جی کون سے ہیں؟ یہ نیٹو ملک سب امریکہ کی کٹھ پتلی ہیں. ایک امریکہ غلط نیتی چلاتا ہے، غلط پالیسی چلاتا ہے، یہ سارے ملک اس کی مدد کرتے ہیں. اس امداد سے یہ ظلم ہو رہا ہے لیبیا میں، کہ لیبیا میں اب ایک سرکار بنی ہے تو سرکار چلنی چاہیے نا، لیکن سرکار کو چلنے کون دیتا ہے؟ ان کے جو وزیر اعظم ہیں، پردھان منتری جی، ان کو ہی پکڑ کے ایک بار رکھ لیا انہوں نے. وہاں کی سرکار کا حکم تریپولی میں جہاں تہاں چلتا ہے. تریپولی کے بھی کئی محلے ہیں، وہ بالکل آزاد ملک کی طرح کام کر رہے ہیں. ایسی حالت میں آپ اگر کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں تو میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز ذمہ دار ہے، جس نے ایک پرستاؤ پارت کیا، ایک ریزولوشن قائم کیا کہ نو فلائی زون ہونا چاہیے لیبیا میں، تاکہ قذافی کو مار گرایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے چیپٹر 7 کا جو آرٹیکل، جو چیپٹر 2 کا جو آرٹیکل 7 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی معاملوں میں دخل اندازی نہ کی جائے. تب دخل اندازی کی جائے جب باہری ملکوں کو کوئی خطرہ ہو. لیبیا سے کس کو خطرہ ہو رہا تھا؟ زبردستی دخل اندازی کی گئی، اور وہ دخل اندازی ابھی بھی مسلسل چل رہی ہے، وہ دخل اندازی ابھی تک بند نہیں ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کو دوبارہ ریزولوشن پاس کر کے یہ جتنے باہری ملکوں کے ملیشیا وہاں کھڑے کر دیے گئے ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب تک یہ نکلیں گے نہیں، لیبیا میں عوام کو چین ملنے والا نہیں ہے، یہ میری پکی رائے ہے.
جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ہمارا رابطہ اس وقت برقرار ہوا ہے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہندوستان کے سینئر صحافی ممتاز کالم نویس اور معروف تجزیہ نگار حسن کمال صاحب سے. حسن کمال صاحب، آداب عرض ہے.
آداب.
حسن کمال صاحب، خبریں آپ کے پیش نظر ہیں کہ جمعے سے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس اور اس کے اطراف میں لڑائی شروع ہوئی ہے، جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں. 80 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں. طرابلس میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور سڑکوں پر ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور اینٹی ایئر کرافٹ توپیں نصب ہیں. یہ جو صورتحال لیبیا میں پیدا ہو رہی ہے، یہ جو تازہ تشدد کی لہر ہے، یہ حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے یا کسی منظم سازش اور منصوبے کے ساتھ وجود میں لائی گئی ہے؟
ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی غیر متوقع نہیں ہے جتنی سمجھی جا رہی ہے.
جی،
کیونکہ یہ جس وقت طرابلس میں بیرونی مداخلت ہوئی تھی، اسی وقت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو سارا کھیل ہے
جی
یہ اتنا معصوم نظر نہیں آتی، معصوم نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. اس کے پیچھے کوئی بہت گہری سازش ہے، گہرا کھیل ہے، اور اس کے پیچھے لیبیا کے تیل کے ذخائر بھی ہیں، اس کا پس منظر ہے. تو اسی وقت یہ معلوم ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جب ایک امریکی سفیر کا وہاں قتل ہوا، تبھی معلوم ہو گیا تھا کہ جس تحریک کو عوامی تحریک بنا کر پیش کیا گیا تھا، وہ دراصل عوامی تحریک اتنی نہیں تھی جتنی کسی باہر کے دماغوں کی اپج اور پیداوار تھی. اور ہو یہ رہا ہے، اور اب تک جو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اتفاق سے تعلیمی مداخلت صرف انہیں ممالک میں ممکن ہو سکتی ہے جہاں عوام کی چنی ہوئی حکومتیں نہیں تھیں، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ لیبیا ہو. وہ جہاں پر عامریت ہے یا جہاں عوام کے منتخب کیے ہوئے حکمراں نہیں ہیں, باہر کی طاقتوں کو بڑی آسانی سے وہاں مداخلت کا موقع مل جاتا ہے, کیونکہ یہ عامر عوام میں مقبول نہیں ہوتے, عوام کے چنے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن بیرونی طاقتوں کا یہ ڈرامہ
جی,
وہ وہاں جمہوری نظام قائم کرنے جا رہے ہیں, عوام کو عامر کے شکنجے سے آزاد کرانے جا رہے ہیں, یہ سب محض ایک ڈرامہ ہی ہوتا. اور لیبیا میں بھی یہی ڈرامہ چلا گیا
جی,
چونکہ معمر قذافی عامر تھے, قنبلہ پرور تھے, تو ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بیرونی طاقتوں کو یہ موقع ملا کہ وہ دخل اندازی کر دیں. اور بیرونی طاقتیں کون ہیں
جی,
وہ بھی بتانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں. اور لیکن کبھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جس طریقے سے عراق میں
جی
صدام حسین کے خاتمے کے بعد بھی اسی طریقے سے عوام قابو میں نہیں آ رہے تھے امریکہ سے, اسی طریقے سے لیبیا میں بھی معمر قذافی کے خاتمے کے بعد وہ سب نہیں ہو پا رہا تھا
جی,
جس کے تحت امریکہ نے اور دوسرے نے وہاں مداخلت کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیرونی طاقتوں کے خلاف ایک اندرونی غصہ ہے
جی
جو وہاں پیدا ہو رہا تھا, اور اب وہ اپنی باہر نکل رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت کوئی غیر متوقع یا حادثاتی یا اتفاقی بات ہے, یہ عوام کی بیرونی طاقتوں کے خلاف نفرت اور غصے کی بات کی علامت.
بہت بہت شکریہ حسن کمال صاحب, لائن پہ رہیے گا. زیدی صاحب, جناب آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ لیبیا میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں خطے کی کچھ مسلم ریاستیں, آپ نے ترکی, سعودی عرب اور قطر کا نام لیا تھا, وید پرتاپ ویدک صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی انہیں جو مسلم ریاستیں لیبیا میں دہشت گردی اور افراتفری میں ملوث رہی ہیں ان کا نام لیتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ بھائی لیبیا میں یہ لوگ کیا کرنے گئے تھے, کیا لیبیا میں کوئی غیر مسلم رہتے ہیں, وہاں پر تو عیسائی نہیں ہیں یا غیر مسلم اقوام نہیں ہیں, وہاں سب مسلمان ہیں. صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا جو خطہ, ان میں جہاں بھی اس وقت افراتفری ہے, لاقانونیت ہے, دہشت گردی ہے, مسلح گروہ سرگرم ہیں, آپ لیبیا سے لے کے شام اور عراق تک جہاں بھی دیکھیں, یہ ان تینوں ریاستوں کا نام لیا جاتا ہے, ان تینوں حکومتوں کا نام لیا جاتا ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا. معاملہ کیا ہے, یہ سعودی عرب, ترکی اور قطر, یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟
جی یہ تینوں کی تینوں جو ہیں بدقسمتی سے یہ سب سرویئنٹ ہیں امریکن انٹرسٹ کے, اور امریکہ کا انٹرسٹ اس ریجن میں جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کے انٹرسٹ میں یہاں کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ہے اسرائیل کا مفاد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو وسائل ہیں, اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے کئی بار عرض کیا کہ کونڈالیسا رائس نے یہ اپنے جب وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مڈل ایسٹ کا جو پولیٹیکل میپ ہے اس کو چینج کریں گے. چنانچہ یہ پولیٹیکل چینج یا چینج آف گورنمنٹس جو ہیں یہ امریکہ نے سعودی عرب, ترکی اور قطر کی مدد سے یہ پروسیس شروع کیا, اور الٹیمیٹ ان کا ہدف تھا کہ عراق سے نکل کر وہ سیدھا ایران جائیں گے, وہاں نہیں جا سکے تو پھر یہ جو یہ ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ سپرنگ شروع ہوا, اور اس میں پھر لیبیا تو بہت ہی ایک یعنی نیکڈ بدماشی کی گئی, اور ایک اوپر سے اور نیچے سے مار مار کے ان کی یہ وہاں کے عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اور وہ ڈکٹیٹر تھا یقیناً تھا, قنبلہ پرور تھا, لیکن جو تبدیلی ہے وہاں کے عوام کو لانی چاہیے تھی, جبکہ تبدیلی باہر سے پلانٹ کی گئی. یہ پلانٹڈ ریولوشن جس کو کہا جاتا ہے وہ تھا ریولوشن, کسی سربراہ مملکت کو ہٹانے کا نام نہیں ہوتا, بلکہ عوام کے حق میں جو تبدیلی آتی ہے وہ انقلاب کہلاتا ہے, جبکہ وہاں کے عوام کے حق میں تبدیلی نہیں آئی. اور اسی طرح جہاں جہاں بھی یہ معاملہ چلا, اور اس کے بعد آخری ان کی جو کوشش تھی وہ شام میں تھی, اور شام میں چونکہ وہ ریزولوشن جو سیکیورٹی کونسل سے انہوں نے لیبیا کے لیے لیا تھا وہ نہیں کر پائے، وہ نہیں ہو پایا، جس میں بہت بڑا جو سپورٹ جاتی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ روس، چین، ایران اور برطانیہ کی لیبر پارٹی، ورنہ تو اوباما دو دن میں حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تمام کا تمام جو اکھڑ پچھاڑ انہوں نے کیا ہے مڈل ایسٹ میں، اور نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ تمام مسلم ممالک میں، انہوں نے یہ جو گروہ بندی کر کے وہاں پر افراتفری کریٹ کی ہے، اس کے کئی مقاصد ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کو اپنے حق میں کرنا۔ سعودی چونکہ انہوں نے ایک سلفی گروہ کریٹ کیا ہے، اور یہ سب کے سب میں سمجھتا ہوں طالبان، القاعدہ اور امریکہ کا جو لابی ہے، اور امریکہ بجائے خود براہ راست، یہ انٹر لنکڈ ہیں۔ یہ جہاں امریکہ نے جانا ہوتا ہے وہاں پر یہ دو بم پھوڑتے ہیں، اور امریکہ پہنچ جاتا ہے کہ یہاں پر اب جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر اب انسانوں کو خطرہ ہے، امن نہیں رہا، تو ہماری فوجوں کو یہاں آنا ضروری ہے۔ اسی بہانے سے وہ ابھی تک افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بہانے سے وہ دوسرے ممالک میں گئے کبھی جمہوریت نافذ کرنے، اور جمہوریت ان کو سعودی عرب کی بادشاہت میں نظر نہیں آتی، جہاں پر کہ بادشاہ اور اس کا بہت بڑا کنبہ ہزاروں میں وہ تمام وسائل پر قابض ہے۔ چنانچہ یہ سب انٹر لنکڈ ہے، اور یہ جو حکومتیں جو اس وقت امریکہ کی مدد کر رہی ہیں یا اس کی حاشیہ بردار ہیں، یہ اس کے ساتھ ان کا لنک، اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو رہی تھی تو 1945 میں یالٹا میں جب ملاقات ہوئی روزویلٹ کی، سٹالن کی اور چرچل کی، تو اس کے فوراً بعد یہ روزویلٹ اور ابن سعود کی ملاقات ہوئی تھی کوئنزی شپ پر، اور اس شپ میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا، خفیہ معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی دو شقیں تھیں، ایک تو یہ کہ سعودی حکمرانوں کو امریکہ تحفظ دے گا، ضمانت دے گا کہ وہ وہاں پر حکمرانی میں قائم رہیں، جس کے بدلے سعودی عرب ان کو تیل مہیا کرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ فلسطین میں جو یہودی بستیاں بسائی جا رہی ہیں، اور ابھی اسرائیل کا قیام 1949 میں عمل میں آیا، لیکن اس سے پہلے جو وہاں یہودی جا رہے ہیں، تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ بھی یہ جو ہیں سعودی ابن سعود، یہ مدد کرے ان کو سیٹل ہونے میں۔ چنانچہ یہ وہ خفیہ معاہدہ تھا جس کی کنٹینیویشن چل رہی ہے، اور اس کنٹینیویشن میں امریکہ سعودی حکمرانوں کو پورا تحفظ دے رہا ہے، سعودی حکمران امریکہ کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ لیکن اس ریجن میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ تبدیلی ہے عوام کی اویکننگ کی۔ عوام امریکی سامراج کی اصل شکل دیکھ چکے ہیں، سعودی عرب کا گندا کردار ان کے سامنے ہے، اور ایران ایک ایمرج ہوا ہے ایک طاقت کے طور پہ، تو صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہے۔ اور اس گھبراہٹ میں اس تمام صورتحال جو ان کے حق میں نہیں گئی، مثلا لیبیا میں مکمل کنٹرول ان کا نہیں ہوا، ملیشیا جو انہوں نے کریٹ کی تھی چیزیں ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے نہیں، حکومت آج تک آئین نہیں بنا سکی، لیبیا کا کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا، وہاں پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں اور جن کا آپس میں مل بیٹھنے کا بھی اتفاق نہیں ہو سکتا کسی بھی ایک سبجیکٹ پر۔ تو یہ افراتفری مسلم ممالک میں یہ تمام اہداف جو میں نے جس طرف نشاندہی کی، ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن عوام میں سمجھتا ہوں بیدار ہیں۔ شام میں عوام نے اس ٹوٹل پلان کو ریجیکٹ کیا ہے، اور وہاں عوام کامیاب رہے ہیں، اسی طرح باقی مسلم ورلڈ میں بھی ان کے عزائم زیادہ دور نہیں جائیں گے، لیکن اس کا ہوگا یہ، اس پروسیس میں الٹیمیٹ کامیابی تو عوام کی ہوگی، لیکن اس پروسیس میں خون خرابہ بہت ہوگا اور ہو رہا ہے، और ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में ये मुसलमान हुक्मरानों ने क्रिएट की है। अमेरिका की पुश्त पनाही उनको हासिल है और ये अमेरिका के दुम छल्ले इस इलाके में खून खराबा क्रिएट कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया वैदक साहब। जनाब जहाँ तक दहशतगर्दों का सवाल है तो ये सच है कि इस वक्त दुनिया में जो दहशतगर्द ग्रोह सरगर्म हैं उनमें अक्सरियत के नाम ऐसे हैं कि जिनसे ये जाहिर होता है कि वो मुसलमान हैं और या मुस्लिम इंतहा पसंद, तो उन्हें मुस्लिम इंतहा पसंद भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि ये अगरचे इनकी बाज़ मुस्लिम हुकूमतों की जानिब से पुष्ट पनाही होती है लेकिन इस हकीकत से आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इन दहशत गर्दों का किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरक़े और किसी भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनका अपना एक अलग मज़हब और अलग मसलक है और वो मसलक है इंसानियत दुश्मनी, दहशतगर्दी फैलाना। इनका अपना एक साम्राज्य एजेंडा है, उसके तहत ये काम कर रहे हैं और ये हकीकत सारी दुनिया के सामने है कि ये अगरचे ये जितने भी दहशतगर्द ग्रोह हैं, चाहे जिबतुन नुसरा हो, चाहे दौलत इस्लामिया फिल इराक व शाम हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, या इस तरह के जितने भी दहशतगर्द ग्रोह हैं, इनकी सरगर्मियों का मरकज़ भी इस्लामी दुनिया है, इनके कार्रवाइयों में मारे भी मुसलमान ही जा रहे हैं। लीबिया में अगर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इनकी सरपरस्त कुछ मुस्लिम रियासतें वहाँ पर इनकी पुष्तपनाही कर रही हैं तो ताज्जुब की कोई बात नहीं है, इसलिए कि पूरी इस्लामी दुनिया इनकी दहशतगर्दी की जद पर है। मेरा सवाल इस वक्त आपसे जो है वो ये है कि लीबिया में फौजी मुदाखलत करके बज़ाहिर डिक्टेटर कज़ाफी की हुकूमत ख़त्म करने और दरअसल इनकलाब को हाईजैक करने वाली ताकतों का मौजूदा सूरत हाल में क्या रोल है?
देखिए, अमेरिका ने ये अहद किया था सारी दुनिया से कि वो लीबिया में से कज़ाफी की तानाशाही ख़त्म करेगा
जी,
लेकिन आज क्या हाल है? इसी लीबिया में पहले एक तानाशाही थी, अब हजारों तानाशाहियों की हुकूमत वहाँ चल रही है। जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस इलाके में आप जाएं, कोई न कोई छोटा मोटा तानाशाह बंदूक लिए हुए, तलवार लिए हुए, तलवार ताने हुए खड़ा रहता है। ये हजारों तानाशाहियों का लीबिया बन गया है। और इसमें जो आपने दहशतगर्दों की बात कही, मैं तो ये कहता हूँ कि दहशतगर्द लोगों को इस्लाम का क ख ग भी नहीं आता, अलिफ बे पे ते भी नहीं आता है, वो समझते ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम कहता है कि जिहादी होना चाहिए। अरे जिहाद का मतलब दहशतगर्दी है क्या? जिहाद तो इतना उम्दा लफ्ज़ है, उसकी इतनी एक रूहानी आध्यात्मिक उसका मतलब है कि बड़े से बड़ा हिंदू और बड़े से बड़ा जैन उसको अपने सिर पर रखे। जिहाद का मतलब है अपनी इंद्रियों के, अपने ऑर्गन्स पर हुकूमत करना, अपने आप पर हुकूमत करना। जो अपने आप पर हुकूमत कर सके, अपनी बुराइयों को रोक सके, वो सच्चा जिहादी है, वो जिहाद अकबर है, वो बड़ा जिहाद है, ऊंचा जिहाद है। तो कहाँ दहशतगर्दी और कहाँ जिहाद, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके अलावा आपने ठीक कहा कि दहशतगर्द ज़्यादातर किन लोगों को मार रहे हैं। हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी चल रही है उसमें हमारे बेचारे कश्मीरी मारे जा रहे हैं, लगभग 1 लाख कश्मीरी मार दिए उन्होंने। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी चल रही है उसमें कौन मारे जा रहे हैं? पठान, ताजिक, उज़्बेक, ये लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी चल रही है वहाँ कौन मारे जा रहे हैं? सब पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिया लोग ही मारे जा रहे हैं, सुन्नी लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं। तो ये दहशतगर्द कर क्या रहे हैं? ये तो सुसाइडल दस्ता है, ये खुद को मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दहशतगर्दी का कोई अंजाम नहीं है, कोई इससे रास्ता निकलने वाला नहीं है। दहशतगर्द लोग कोई नई सरकार नहीं बना सकते, नई कोई इंतज़ामिया खड़ी नहीं कर सकते, इनके पास नया कोई तसव्वुर नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि दहशतगर्द जब लीबिया में कार्रवाई करते हैं और इनकी मदद करने वाले मुल्क जो दहशतगर्दी के खुद शिकार हुए हैं, अमरीका जिसने दहशतगर्दों को सबसे ज़्यादा मदद की है, उसको दहशत गर्दों ने ही सबक सिखाया है। आप देखें कि दहशत गर्दी की एक खूबी और है जो मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुद महसूस किया कि अफगानिस्तान में जिन दहशत गर्दों को अमेरिका ने पाला और पोसा था, उनको मुजाहिदीन कह के, जिहादी कह के आगे बढ़ाया था, उन्हीं दहशत गर्दों ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया। हमारे ज़ियाउल हक साहब ने पाकिस्तान में जिन दहशत गर्दों को आगे बढ़ाया था, उन्हीं दहशत गर्दों ने उनको मार गिराया। यानी दहशत गर्द उस हाथ को कच्चा चबा डालते हैं जो उनको खाना खिलाता है। इसलिए ये बात भी समझना चाहिए इस्लामी मुल्कों को और इस्लामी आवाम को कि दहशत गर्द किसी के यार नहीं है। वो अपने अहंकार के, अपने खुदगर्जी के, अपने एक मायोपिया दिमाग में रहता है। एक छोटी सी दुनिया उन्होंने बना रखी है, उसमें वो भूले रहते हैं, उसी भूल में वो पड़े रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे दहशतगर्द बिल्कुल बिना दिमाग के हैं, बहुत दिमागी लोग होते हैं, बहुत नेक लोग भी उनमें होते हैं, लेकिन उनको कोई तसव्वुर नहीं होता है। छोटा दिमाग होता है, छोटा सोच होता है, और उसी कारण वो खुद का भी नुकसान करते हैं और सारे ज़माने का नुकसान करते हैं। और उनकी वजह से एक जो सबसे बुरा काम होता है, जिससे मुझको भी तकलीफ़ होती है, कि इस्लाम बदनाम होता है। लोग इस्लाम के बारे में, जो गैर इस्लामी लोग हैं, वो मस्जिद में जाके वाज तो सुनते नहीं हैं, वो कुरान शरीफ तो पढ़ते नहीं हैं, वो हदीस के अच्छे अच्छे किस्से सुन नहीं पाते हैं। वो तो यही सुन पाते हैं कि फला दहशतगर्द ने इस्लाम के नाम पर क्या किया। तो इस्लाम को बदनाम करने का इस वक्त सबसे बड़ा अगर कोई काम कर रहा है, सबसे बल्कि गंदा काम कोई कर रहा है, तो वो दहशतगर्द लोग कर रहे हैं। अगर वो इस्लाम को पसंद करते हैं तो उनको ऐसी एक एग्जाम्पल रखना चाहिए, एक ऐसा सबके सामने सबक रखना चाहिए कि लोग कहें कि वाह, एक कोई मुसलमान है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा आला इंसान होना चाहिए। आपने ठीक कहा कि वो तो इंसानियत से दुश्मनी कर रहे हैं, तो उनको कोई सच्ची राह दिखाने वाला चाहिए। मैं बड़े मौलानाओं से, बड़े जो आलिम फाजिल लोग हैं इस्लाम के, जो बड़े गुरु लोग हैं, महंत लोग हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे इल्तजा करता हूँ कि इन दहशतगर्दों को, वो भी अपने भाई हैं, उनको समझाएं कि भाई तुम गलत रास्ते पर हो, इस रास्ते से कोई मंजिल मिलने वाली नहीं है, ये एक बेमंजिल रास्ता है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन कमाल साहब, क्या लीबिया की मौजूदा सूरत हाल किसी हमागीर और बड़ी खाना जंगी का पेश खैमा साबित हो सकती?
देखिए, जनाब, मैं समझता हूँ कि रक्षे तसव्वुर को बहुत ज्यादा छोड़ना होगा।
जी,
अगर हम ये समझे कि मशरिक़े वुस्ता की सियासत या ईरान और या सऊदी अरबिया, इन सब के उसपे लीबिया का कोई बहुत बड़ा रोल रहा है। लीबिया बहुत दूर स्थित इलाका अफ्रीका में है, और कभी मुश्किल व्यवस्था की सियासत पर लीबिया का कोई असर और कोई पाया दिखाई नहीं दिया। मैं सीधी सी बात यह समझता हूँ कि ये बड़ी जबरदस्त और शदीद गलती थी कि बैरूनी मुल्कों ने जमहूरियत लाने के नाम पर यके बाद दूसरे गलतियां की और उसका खामियाजा भुगता। और लीबिया ने भी इन ताकतों ने, चाहे आप उनका नाम किसी रख लें, चाहे उसमें आप किसी को भी शामिल समझें, लेकिन इन सब में एक बुनियादी गलती ये थी कि वो एक ऐसी जगह, अजनबी जगह पहुंच गए जहां के बारे में उनकी मालूमात बहुत इब्तदाई और बहुत सतही थी। यकीनन मोहम्मद कज़ाफी जो भी रहे हों, वो आवाम के बहुत महबूब रहनुमा नहीं साबित हुए, ये सारी दुनिया ने देखी है, बिल्कुल जैसे सद्दाम हुसैन ने। लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि असल मकसद लीबिया के बेपनाह तेल के ज़खायर पर कब्जा करना था। और ये भूल गए थे, बिल्कुल मुझे ये आ जाता है, गलबन आपको भी ख्याल हो कि जब इराक में अमरीकी फौजें दाखिल हुई थी तो उनको ये बताया गया था कि जब वो बसरे की तरफ से निकलेंगी तो फौजियों के लिए लोग हार फूल लिए खड़े होंगे।
जी,
लेकिन मालूम ये हुआ कि सबसे पहले वही उनका इस्तकबाल गोलियों से हुआ। लीबिया के बारे में भी उन्हें यही बताया गया था कि मुअम्मर कज़ाफी के खत्म होने के बाद आवाम जो है वो नाचते हुए सड़कों पर निकल आई है, और बैरूनी जो मदाखिलकार है उनका बड़ा स्वागत करे।
जी,
और बाद में ये मालूम हुआ کہ انہوں نے عوام کے مزاج کا دونوں جگہ کوئی اندازہ نہیں لگا. عوام اپنے حکمراں سے ناخوش ہو سکتے تھے لیکن امریکہ یا کسی اور ملک سے خوش نہیں تھے، نہ ان کی مداخلت سے خوش تھے. اور آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ کو اور ان تمام طاقتوں کو خمیازہ بگڑتا پڑ رہا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس میں بھی نشانہ لیبیا کے عوام بن رہے ہیں. خون بہے گا تو لیبیائی عوام کا بہے گا، یہ بہت افسوسناک بات ہے. لیکن یہ بھی طے ہے کہ جن مقاصد کے تحت یہ تمام کاروائیاں تمام جگہوں پر کی گئی تھی وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. ان طاقتوں کو ناکامی ہوئی ہے، ان طاقتوں کو ناکامی ہوگی، یہ طاقتیں ناکام ہو کر رہیں گی. انجام کار عوام کی مرضی، عوام کا منشا اور عوام کی خواہش کی کامیاب.
بہت بہت شکریہ زیدی صاحب. ہمارے پاس کے ڈیڑھ منٹ کا وقت رہ گیا ہے. لیبیا میں سامراج کے اہداف کیا ہیں؟ کیا خانہ جنگی کے ذریعے وہ اپنے اہداف حاصل کر پائے گا؟ ڈیڑھ منٹ کا وقت.
جی، خانہ جنگی ہی اس کا ہدف ہے.
جی،
وہ خانہ جنگی چلتی رہے گی تو لیبیا انسٹیبل رہے گا. انسٹیبل رہے گا تو اس کے نتیجے میں جو تیل ہے وہ مختلف جو ملیشیا گروپس ہیں ان کے ہاتھ چڑھے گا، اور ان سے وہ جس قیمت پر چاہے گا وہ پھر ان سے وہ تیل خریدے گا. اور نہ صرف خریدے گا بلکہ کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں سے تیل چوری ہو رہا ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو اس کے جو ہدف ہے وہ ہدف لیبیا کے غیر مستحکم ملک رہنے کی شکل میں ہی اس کے جو ہدف ہیں وہ اپنے حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بدامنی کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور وہ اس کو جاری رکھنا چاہے گا، جبکہ عوام وہاں کے ملیشیا اور وہاں کے جو دہشت گرد ہیں ان سے وہ نجات چاہتے ہیں.
جی،
اور یہ بدامنی کو عوام ہی روک سکتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ عوام الٹیمیٹلی اس بدامنی پر قابو پا لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگلی جنوری سے ایک اور، یعنی جو خبر آج میں نے دیکھی کہ اگلی جنوری سے اٹلی، ٹرکی، برطانیہ اور امریکہ مل کر وہاں پر جو لیبیا میں نئی ریکروٹس، نئے جو بھرتی ہوں گے فوج کے لیے لوگ، ان کو وہ ٹریننگ دیں گے. تو یہ ٹریننگ کس بات کی دیں گے؟ وہاں بیٹھ کر اسلحہ مہیا کر رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دیں گے. تو وہ ملک میں بدامنی رکھنا چاہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.
چلے جا رہے ہیں،
اس میں دو رائے نہیں کہ جس ملک میں بھی عدم استحکام ہوگا، خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی، وہاں سامراج کے اہداف زیادہ آسانی کے ساتھ پورے ہو سکتے ہیں. اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے حالیہ تشدد میں مارے جانے والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے ساتھ ہی لیبیا میں قومی اتحاد و یکجہتی کی تقویت پر زور دیا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.